हमारे यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, बहुत ही कंधों पर जिम्मेवारियां हैं, लेकिन उतना ही फिर लाइट भी रहते हैं। इजी और बिजी का बहुत सुंदर बैलेंस, हर भट्टी में अपना अमूल्य समय अवश्य निकाल कर आते हैं, और दादियों से, बाबा से, मम्मा से जो पालना ली है उसकी भावना सभी को देते हैं। तो अभी हम सुनेंगे दीदी से और उसके बाद स्वागत टोली भी प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे बाबा की विशेष चरित्र भूमि, दादियों की विशेष कर्म भूमि, और मधुबन तो अपना ही घर है, अपने ही घर में, अपने ही बाबा के घर में, अपने ही बाबा के द्वारा, अपने ही मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आपका भट्टी में आए हुए राजकोट के भाई बहने, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। राजकोट वाले भाग्यशाली हैं, पहले भी एक ग्रुप यहाँ भट्टी करने आया था, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है कि दूसरे ग्रुप को भी चांस मिल गया है, नहीं तो कई कई बहनें आती हैं कहती हमको चांस नहीं मिलता है, नज़दीक रहने का फायदा होता है। और दूसरा भाग्य है कि जून का महीना प्यारी मातेश्वरी जी का महीना है, उस महीने के अंदर मातेश्वरी जी ने हमारे को कितनी शक्ति, कितना प्यार, कितनी पालना दी, उस महीने के अंदर आपको भट्टी करने का मौका मिला है। और तीसरा भाग्य क्या मिला, एक दिन पहले आ गए क्योंकि हमने पूछा कि एक दिन पहले, बोला कि ट्रेन के कारण एक दिन पहले आए हैं, तो कल भी इतना योग तपस्या कर रहे थे, आज सुबह घूमने भी गए, और चौथा भाग्य ड्रामा अनुसार इंद्रदेव भी आपके ऊपर खुश हो गए। देखो ना गर्मी है ना कुछ है, मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा है, वहाँ राजकोट में रहते हैं गर्मी तो बहुत है, लेकिन आजकल जमाना बदल चुका है, चारों ही तरफ घरों में एसी कूलर कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन बाबा के घर में कैसा है, कहीं पर भी एसी नहीं है, कहीं पर भी कूलर नहीं है। यहाँ पांडव भवन में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं है, लेकिन जो बाबा का प्यार है, बाबा की जो पालना है, वो सब सुविधाओं का अनुभव करा देती है। तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। फिर पांचवा भाग्य कौन सा है कि आपको ऐसी दीदी मिली है, भारती दीदी, जिसने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है। और भारती दीदी तो बहुत ही बाबा की लाडली, दीदी की लाडली, दादियों की लाडली, और जैसे सरला दीदी का दिल बड़ा विशाल, ऐसे भारती दीदी का भी, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद दादी जी यहाँ सारा कारोबार देखती, और यही पांडव भवन था, और पांडव भवन में ही सब प्रकार के प्रोग्राम्स चलते थे, और बाबा के बच्चे भी बढ़ने लगे। कल परसों सुना ना आपने मुरली के अंदर, कल अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ना कैसे बाबा के बच्चे बढ़ गए, सभी हॉल छोटे हो गए। कल का सुना ना कि मुरली में सुना कि बाबा ओम शांति भवन में है, और बहुत से भाई बहने चारों तरफ से आ गए, और गुजरात को तो मौका मिलता था सुबह आओ शाम चले जाओ, तो वो आ जाते थे, और वो मौका भी मिलता और दूसरा सेवा भी करते, दोनों काम करते, ऐसा नहीं। तो फिर बाबा ने कहा देखो मेडिटेशन हॉल भी भर गया है, कोई नीचे बैठे हैं, कोई बाहर बैठे हैं, बाहर के सभी मकान लिए गए थे जहाँ पर सबको ठहराया था। फिर उस समय क्या हुआ था, शायद सुनाई वो कहानी, सुनाया शिल्वर ने भी नहीं सुनाया है। उस समय क्या हुआ था कि ये अप्रैल का महीना था और अप्रैल के महीने में कभी कभी होता है कि शाम के टाइम पर इतनी जोर से आंधी आई, इतनी जोर से आंधी आई क्योंकि बहुत से भाई बहने आए थे। तो यहाँ पर मेडिटेशन हॉल के बाहर, इधर हवाई महल के बाहर छत है, वहाँ टेंट लगा दिया था, भाइयों को वहाँ ठहराया था और कुछ टेंट लगाए हुए थे हिस्ट्री हॉल के ऊपर। अभी सोलार लगा, उस समय नहीं था, वहाँ भी टेंट लगाया था और भी चारों तरफ टेंट लगाए थे। शाम को जब जोर से हवा आई, पहले तो मिट्टी वाली हवा आई और जहाँ खाना बनता है किचन में, वहाँ थोड़ी थोड़ी रेत चली गई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा आटा बन सकता है ना। तो फिर जो आंधी जोर से आई, सब के सब टेंट उड़ गए। भाई लोग यहाँ आकर के मेडिटेशन हॉल में बैठ गए, बहने कुछ वहाँ बैठी थी हिस्ट्री हॉल के पास, उधर बाहर गली में बैठी थी, डिस्पेंसरी के सामने गली है और रात को बारिश आ गई। लेकिन सब इतने खुश थे कि बाबा के घर में ठिकाना तो है, कम से कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, खाना पीना गरम गरम उनको चाय दी जा रही थी, सब साधन वहीं बैठे बैठे पहुंचा रहे थे, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं थी और बहुत अच्छी तरह से। तो बाबा क्या करते हैं, बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, बाबा बच्चों की पूरी संभाल करते हैं। बाबा ने मुरली के अंदर कहा, दुनिया में कुछ भी होता रहेगा लेकिन बाप के बच्चे सदा भरपूर रहेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो बाबा बच्चों को दाल रोटी तो प्रोवाइड कर ही देगा ना। तो बाबा के बच्चे हैं, बने हैं, तो बाबा अपने बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। तो दादी के टाइम पर जैसे जैसे भाई बहने क्लास या बहुत आने लगे, सेवाएं बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि बाबा ने कहा था ना कि बाबा ने दूसरा फॉर्म चेंज किया है। बाबा साकार में होते तो लोग समझते नहीं थे, बाबा अव्यक्त बने, जैसे अव्यक्त बने तो कहाँ कहाँ सेंटर खुलने शुरू हुए। गुजरात में तो इतने सेंटर खुलने शुरू हो गए, फटाफट सेंटर खुलते रहे और बाबा के बच्चे भी बढ़ते रहे। तो आप सभी बाबा के शुभ संकल्पों की रचना है कि नहीं है, जिन्होंने सब, तो बाबा को तो किसी ने देखा ही नहीं है ना, ना बाबा को ना मम्मा को। तो बाबा ने पहले से ही आपके गुजरात से तो बाबा का बहुत प्यार था, सरला दीदी को भी बाबा ने ही अहमदाबाद भेजा था। दीदी बैठी तो क्या बस जैसे ना आ ही रहे हैं, बढ़ते ही रहे। और फिर सबसे बड़ी सेवा तो क्या थी, यहाँ से कोई कहाँ भी जाते थे, दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, कहाँ जाए, उधर जाए, क्या साउथ इंडिया जाए, तो दीदी के पास सारे बहनें तैयार रहती थी। सुबह सुबह ट्रेन पर चाय खाना पहुंचाते थे, इतनी सेवा करते थे। और फिर जब कभी जरूरत होती थी तो प्यारी दादी कहती थी सरला दीदी को, सरला दीदी को दादी कहती थी, सरला ऐसे बोलती, वहां से गुजरात से सेवाधारी भेजो। तो सरला दीदी क्या करती थी, राजकोट से भेज देंगे, कहाँ से भेज देंगे, कभी कहाँ से भेज देंगे, आप सभी तो चेहरे भी देखे हुए लगते हैं, यहाँ पर आकर के बहुत सेवाएं की हैं। तो भारती दीदी का मधुबन से बहुत बहुत प्यार है और वो बहुत प्यार से ही सबकी पालना करती हैं, क्योंकि उनको बाबा और दादियों ने कितनी पालना दी है और कितने उनके पास अनुभव हैं। आपके पास तो अनुभवों का खजाना भरपूर होगा, होगा ना। फिर भी बाबा के घर में यहाँ भट्टी करने क्यों आए हो, हैं? वहां तो इतना मिला है बाबा के साथ के अनुभव में, फिर यहाँ क्यों आए भट्टी करने, बोलो ना, हैं? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे, डर के बोल रहे। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ भट्टी करना मीन्स बाबा के साथ का अनुभव करना। कहते हैं ना कि हमने साकार को नहीं देखा, बाबा कहते साकार को नहीं देखा, साकार तो साथ है। बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते, जल्दी करो बताओ तुम्हारे बच्चे कब तैयार होंगे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, बाबा ये तैयार हो रहे हैं ना, हो रहे हैं। ये नहीं कभी कहेंगे बच्चे ऐसे हैं, सुनते नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करते, ढीले हैं, मोह में फंसे हुए हैं, कोई इधर फंसा हुआ, कोई कहाँ है, कुछ बाबा कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते तैयार हो रहे हैं। फिर कभी कभी बच्चे बाबा को कहते बाबा कब विनाश होगा, तो बाबा ने कहा पहले तुम तैयार हो। आज भी बाबा ने कर्मा तीन स्टेज बनेगी तब तो विनाश होगा ना। फिर तीसरी बात बाबा कहते तो तुम क्या चाहते हो, मैं चला जाऊं क्या? तुम कहते विनाश जल्दी हो तो मैं जल्दी चला जाता हूँ। तो बाबा कहते संगम युग का समय इतना सुहाना है जो पूरे कल्प के अंदर एक ही बार मिलता है। संगम युग के अंदर कैसे भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, साधारण हैं, कैसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, शरीर साथ देता है या नहीं देता है। बाबा कहते संगम युग के जो सुहावने पल हैं वो तो आपको सतयुग में भी नहीं मिलेंगे। सतयुग में जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो पता पड़ेगा ये हमारी दीदी है, ये हमारी दीदी हमारे साथ इतनी आई थी, मधुबन में आए थे, बाबा के संग थे, गोप गोपियों के संग रास किया था, ये आपको याद रहेगा। वहाँ रास करोगे लेकिन ये तो याद नहीं रहेगा ना कि हमने संगम युग के अंदर अपने बाबा के साथ, दादियों के साथ, दीदियों के साथ खूब अनुभव किए, खूब मजे किए, ब्रह्मा भोजन खाया। देव शास्त्रों में भी गायन आता ना कि देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, तो वहाँ का भोजन अपने प्रकार का होगा लेकिन यहाँ का भोजन तो किस प्रकार का है? बाबा की याद का ईश्वरीय ब्रह्मा भोजन मिलता है। तो ऐसा भोजन मिलता है तो संगम युग के जो महत्व है, बाबा के साथ का अनुभव है, वो है इस समय हम मधुबन में प्राप्त करते हैं। तो मधुबन के अंदर भट्टी में आना मीन्स बाप के साथ का अनुभव करना, बाप के छत्र छाया में रहना। बाप ही हमको चलाता है, बाबा ही हमारी बैकबोन है, बाबा ही हाथ पकड़ करके चलाता है। अब दूसरी बात, यहाँ जो भट्टी करते हैं देखो वहाँ तो आपको बहुत सुंदर सुंदर हॉल मिलते हैं, रिट्रीट सेंटर में जाते हैं, कभी कहाँ कहाँ भट्टी करते हैं, यहाँ तो ये हॉल भी बहुत साधारण है लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब बाबा अव्यक्त हुए ना उस समय अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हाँ बाबा के कमरे में आते थे, फिर उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में आने लगे। एक बार बाबा के बच्चे ढेर आ गए और फिर बाबा कहाँ आए, क्योंकि उस समय ओम शांति भवन नहीं था, मेडिटेशन हॉल नहीं था। फिर क्या किया था बाबा के बाहर जो ऑफिस के बाहर आंगन है वहाँ पर अव्यक्त बाबा की स्टेज बनाई थी और बहुत से भाई बहने थे, किसको कहाँ रखा। और फिर दो टाइम खाना मिलता था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन 10 से 11 के बीच में, शाम को 5 से 6 के बीच में इसी कोर्टयार्ड में, इसी आंगन में नीचे बैठ के खाते थे। फिर सफाई करके शाम को बाबा का प्रोग्राम था, फिर सब भाई बहने कोई छतों पर बैठे, कोई इधर बैठे, तो ऐसा लगता था कि ये जैसे कि फरिश्तों की सभा है। तो फिर उसके बाद मीटिंग किया गया कि अब तो बाबा के बच्चे बढ़ेंगे तो क्या किया जाए। तो ये जो स्थान है जहाँ पर आप बैठे हो ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ी की विशेषता क्या है, आपने बाबा का एक फोटो देखा है ना, क्या देखा है ऐसे करते हुए, वो इसी पहाड़ी का है। फिर दूसरी विशेषता, ये इस बगीचे में जो अंगूर की बेल है वो इस पहाड़ी के ऊपर थी। जिस दिन 24 जून को मम्मा अव्यक्त हुई उसी दिन बाबा ने मम्मा को कहा था बच्चे बैठे हैं मिलना चाहते हैं, तो मम्मा को कहा था कि मम्मा बच्चों को दृष्टि दो। फिर बाबा ने वो अंगूर तुड़वा करके सबको अंगूर मम्मा के हाथ से दिए थे, बड़े बड़े अंगूर, उसमें दो बड़े बड़े बीज होते हैं, वो बेल यहाँ पर थी। और जून के महीने में सब तैयार हो जाते थे बाबा, वो अंगूर जो है ना सभी जगह पर, यहाँ से दो तीन ग्रुप बनाते थे, एक ग्रुप जाता था इधर राजस्थान होते हुए जयपुर अजमेर होते दिल्ली, दूसरा ग्रुप जाएगा पंजाब की ओर, तीसरा जाएगा महाराष्ट्र बॉम्बे महाराष्ट्र की ओर, चौथा फिर गुजरात से होते हुए फिर जाएगा उधर साउथ इंडिया की तरफ। तो ये अंगूर की बेल काट दी गई है लेकिन फिर भी मम्मा डे पर अंगूर वो जो बेल का है वो इसमें से आते हैं, वो भोग पे रखे जाते, सबको अंगूर मिलता है। तो ये अंगूर की बेल इस पहाड़ी पर थी। तो इस पहाड़ी की दो तीन विशेषताएं हैं, एक तो प्यारी मातेश्वरी जी की विशेष यादगार अंगूर की बेल, दूसरा साकार में बाबा यहाँ पर तपस्या की, तीसरा बाबा क्या करते थे, कल परसों ही मुरली में था जिसमें बाबा ने क्या कहा, बाबा बच्चों को बुलाते कहते आओ सेमिनार करो, सेमिनार करो, सुना आपने मुरली के अंदर, सेमिनार क्या करना है, योग कैसे लगाना है, अच्छा अनुभव कैसे करना है, बाबा ऐसे सेमिनार करते थे। तो बाबा यहाँ खड़े हो जाते थे छत पे पहाड़ी पे, फिर गीत बजता था धरती को आकाश पुकारे, सब दौड़ दौड़ करके आ जाते थे, जहाँ बाबा वहाँ सब बच्चे सब आ जाएंगे बाबा बाबा करते यहाँ। फिर बाबा उनको यहाँ रास भी कराते, बाबा उनके साथ बैठते भी थे, महारथियों के साथ बैठ करके बाबा सेवा के प्लान भी बनाते थे। तो ये पहाड़ी के दो महत्व हैं। और यहाँ पर ये हॉल जो है 1975 में बन करके तैयार हुआ है। तो 75 से अव्यक्त बाप दादा यहाँ आने लगे। तो अव्यक्त बाप दादा पता है कहाँ बैठते थे, यहाँ बाबा की कुर्सी होती थी, और हम सब कहाँ बैठते थे, आप तो दूर हो, ठीक है ना, अभी दूर हो, हम यहाँ बैठते थे बाबा के पास, यहाँ कुर्सी के एकदम नजदीक बैठे हुए, जैसे बाप के होते ना माँ बाप के पास बच्चे आस पास पड़े बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, और दूर होंगे तो माँ बाप के नहीं 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 नजदीक आओ नजदीक आओ, थोड़ा दूर हो जाते थे बाबा के, आओ नजदीक आओ इधर आओ नजदीक आओ, यहाँ सारा कोना भर के बैठे रहते थे और पूरा टाइम बाबा को देखते थे। बाबा तो पेटोली भी खिलाते, वहां तो अच्छे अच्छे अनुभव किए। तो इस हॉल की विशेषता ये है, एक तो साकार बाबा की विशेष तपस्वी स्थान, दूसरा अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हॉल। तो अव्यक्त बाप दादा ने यहाँ पर जितने वरदान, क्योंकि ओम शांति भवन बना 1983 में, तो उस समय है ना 83 में बना, 83 तक अव्यक्त बाबा यहाँ आते रहे हैं और बाहर के VIPs के प्रोग्राम भी यहाँ होते रहे। तो इस भट्टी में आपको दो तरह के अनुभव होंगे, एक तो वरदानों की वर्षा बाबा करेंगे, फिर देखना ऐसा ना झोली खाली हो, छेद हो तो वरदान मिल रहे हैं तो निकलते जाए, हैं ऐसा नहीं करना। दूसरा साकार बाबा आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे, हैं क्या करोगे, साकार बाबा आपके सामने आ जाएंगे तो क्या करोगे, बोलो माताएं, हैं गले लगोगे, हैं बाबा के गले लगोगे, बाबा को हाथ मिलाओगे। अब हम आपको बताते हैं, बाबा जब हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते थे ना, तो बाबा कभी मुरली सुनाते सुनाते कभी खड़े हो जाते थे, तो बाबा हॉल में चक्कर लगाते थे, और बाबा जब दृष्टि दे रहे हैं तो सब के सब ऐसे सूक्ष्म वतन की ओर उड़ जाते, सब फरिश्ते बन जाते, किसको ये पता नहीं कि मेरे पास में कौन बैठा है। उस स्टेज के अंदर बाबा जैसे दृष्टि देते उनको इतने अच्छे अनुभव होते, इतने अच्छे अनुभव होते, तो आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा, बाबा मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को दृष्टि दे रहे हैं, मेरे को भरपूर कर रहे हैं, मेरे को ये प्राप्ति हो रही, ये अनुभव इस भट्टी के अंदर आप सबको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर भट्टी करने का महत्व अपना ही है। फिर दूसरी बात है, साकार बाबा के टाइम पर तो सब कमरे बहुत साधारण थे, और हम जब आते थे वहां तो उस समय खटिया थी नहीं, सबके सब बाबा के टाइम पर सबके सब पट पर सोते थे, और बाबा बच्चों को प्यार करते हुए कहते थे देखो देखो मेरे सब कौन आए हैं, पट राजा और पट रानी आ गए हैं, और अभी क्या मिला आपको, अभी तो पलंग मिल गए हैं, अभी क्या कहोगे, हैं क्या मिले क्या बोलोगे अभी बताओ, अभी देखे किसकी बुद्धि क्लियर है, हैं अभी ये तो नहीं कहोगे हम पलंग राजा या रानिया हैं, अरे बोलो ना हम दिल बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, ये बोलो पक्का नशा जाइए ना, हम तो बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, बाबा ने हमको दिल तख्त पर बिठाया और क्या चाहिए। और राजकोट वाले तो इतने लाडले हैं, इनको तो बार बार यहाँ आने का चांस मिलता, जब मिलेंगे बहन जी ओम शांति, हम राजकोट से आए हैं, तो हम पहचान भी लेते हैं इनको, ये राजकोट से आए हैं। बड़ा मजा आता है क्योंकि बहुत अच्छे हल्के रीति से सेवा भी खूब करते हैं और बहुत अच्छा होकर के सेवा करते हैं। तो बाबा कहते सेवा करने वाले, बाबा से प्यार करने वाले, जिनका बाबा से सच्चा प्यार है, सच्चे दिल वाले, निश्चय बुद्धि बाप के दिल तख्त पर सदा विराजमान है। तो आप सभी सदा दिल तख्त पर विराजमान हो ना। फिर दूसरी बात, भट्टी के अंदर बाबा हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे। एक तो बाबा कहते हैं फरिश्ते बन के चलो। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, मई और जून का ये महीना था जबकि हमको साकार बाबा के साथ यहाँ रहने का मौका मिला था। काफी टाइम हम यहाँ पर रहे थे बाबा के साथ। माँ को तो, मातेश्वरी जी को तो देखा ही है। मातेश्वरी जी हमारे पास करनाल में आए थे, वहाँ पर बहुत दिन रहे थे और वो पंजाब के टू, उस समय तो हरियाणा नहीं था, पंजाब कहलाता था। तो मम्मा मातेश्वरी जी ने पंजाब का टूर किया था, करनाल में रहे थे। तो मातेश्वरी जी के साथ भी रहने का हमें मौका मिला क्योंकि हम छोटे थे, स्कूल से आए थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी उस समय हमारे उस सेंटर पर बहुत सी कुमारियों का झुंड था, लेकिन कई सभी कुमारियों को कोई ना कोई बंधन था। किसी को बंधन था अपनी माँ का, किसी को बाप का, किसी को परिवार का। वो सब आते थे, छिप छिप करके आते थे, लेकिन हमारा एक शुरू से भाग्य रहा कि हमें कोई भी प्रकार का बंधन नहीं था, ना परिवार से ना कुछ, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। अभी ऐसा भी होता था, बच्चे थे, ज्ञान में आ गए, हमारी लौकिक माँ आई, साथ में हम भी आ गए। तो हम माता जी जाती थी सेंटर पर, मैं पढ़ती थी, मैं भी साथ में जाती थी। लेकिन बच्चे तो कभी कभी सुस्ती कर लेते हैं ना, तो कभी कभी मन करता था आज मैं क्लास में नहीं जाऊंगी, तो मेरा भाई कहेगा या फादर कहेगा, हालांकि वो फादर तो क्लास ज्ञान नहीं सुनते, उनको अच्छा लगता था, छुट्टी थी, तो कहेंगे आज तुम क्लास में क्यों नहीं गई। अरे मेरे को नहीं जाना, तो देखो ना बाबा कैसे किसी के द्वारा कहला देता। तो अब छोटे बच्चे हैं, मस्ती करते भी, हमको नहीं जाना है आज, क्यों जाएं क्लास में। तो बाबा जैसे उनको कहता नहीं नहीं तुमको जाना चाहिए, तो हमको फिर तैयार होकर जाना पड़ता था कि नहीं तो पूछेगा भाई आज क्यों नहीं गए क्लास में। तो उस समय मम्मा के टाइम पर क्या था, तो बाकी तो बहनें कुमारियां आती थी, कोई छुप छुप के आती थी, कोई 10 मिनट मिली, कोई 15 मिनट मिली, मिल करके चली जाती थी। और मुझे मौका मिला, सुबह से लेकर शाम तक मैं सेंटर पर ही रहती थी और मैं छिप छिप करके मम्मा को देखती थी, क्योंकि मम्मा का जो कमरा था ना, तो उसमें बहुत एक सुंदर खिड़की थी। तो क्या करते बच्चे, तो बच्चे ही होते हैं ना, अब मामा के पास सारा टाइम तो जा नहीं सकते हैं। अच्छा सेवा करती थी, खाना खिलाने में, उसमें बाकी काम में मदद करती थी, फिर जब फ्री होती थी खिड़की से मामा को देखती रहती थी। तो मामा को देखती थी, कई बार मामा ने देख भी लिया मेरे को और बोला अंदर आओ अंदर आओ। तो अंदर जाते थे तो जाते ऐसे डर लगता था कि हम मामा के पास पहुंच गए। लेकिन मामा का जो प्यार था, इतना प्यार होता था, एक सेकंड के अंदर जैसे कि सब खुशियों से भरपूर कर देते। तो मम्मा ने सिर पे हाथ भी रखा, तो मम्मा ने ये भी कहा कि तुमको सेवा भी करनी है, तुम विश्व की सेवा करनी है। अब हम तो कुछ समझते नहीं थे विश्व की सेवा क्या है, क्योंकि क्या है, बंधन घर का नहीं, आराम से आते थे, आराम से ज्ञान सुनते थे, बाबा आप ही सब काम करा देते थे, बाबा आप ही अनुभव करा देते थे। और हमारी कुमारियों का झुंड बहुत बड़ा झुंड था, बहुत एक्टिव, डांस गीत, जैसे गुजरात में डांस करते रहते हैं ना, ऐसे डांस गीत सब करते रहते थे। लेकिन मैं नहीं करती थी, अभी भल कर लूं अभी भल गीत गा लूं, कुछ भी कर लूं, है बहुत गा लूंगी, लेकिन उस समय तो थोड़ा सा संकोच होता था। लेकिन मम्मा ने बहुत कुछ ऐसे अनुभव कराए, तो मम्मा के साथ मुझे काफी दिन वहां पर रहने का मौका मिला। फिर मम्मा पंजाब के टूर पर जैसे अम्बाला इधर उधर मम्मा गई, तो एक दो स्थानों पर गए, बाकी स्थान पर मैं नहीं जा सकी क्योंकि पढ़ाई भी करती थी। तो बाबा के साथ तो यहाँ पर 2-2.5 मास रहने का मौका मिला। तो बाबा कैसे बच्चों को प्यार करते हैं, बाबा के साथ भोजन भी खाने का मौका मिला, क्योंकि सबसे बड़ा भाग्य है कि जब बड़ों के साथ आते तो भाग्य मिल जाता। उस समय मनोहर दादी करनाल में थे, तो मनोहर दादी यहाँ आए तो मेरे को अपने साथ लेकर के आई। फिर बाबा से जैसे वो मिलने जाती थी तो बाबा कहते थे वो बच्ची कहाँ है, वो बच्ची को बुलाओ, तो बाबा मेरे को भी बुला लेते थे। बाबा दादियों से जो बात करते थे वो हम तो सुन लेते थे, वो बाबा जैसे पालना दे रहे थे। तो आज मैं अनुभव करती हूँ कि बाबा ने वो संस्कार हमारे अंदर पहले से ही भर दिए, तो बाबा के साथ हम यहाँ रहते थे। तो फिर बाबा सुबह अमृत वेले योग के बाद यहाँ पांडव भवन के आंगन में खड़े हो जाते थे। फिर बाबा सुबह, मई जून का महीना था, गर्मी का मास था, तो बाबा चक्कर लगाते पहले जो निवे भाई का ऑफिस की सीनी है वहाँ पर खड़े हो जाते थे। तो वहाँ खड़े होकर के सबको दृष्टि दे करके वरदान देते थे। फिर बाबा आगे बढ़ते हुए हमारे ऑफिस के बाहर जो थल्ला है ना, वो पहाड़ी है, उस पर बाबा खड़े हो जाते। फिर बाबा वहाँ पर भी बच्चों को वरदान दे करके गेट के पास जाते और बाबा कहते थे बच्चे फरिश्ते बन करके सारे विश्व में उड़ जाओ। अरे सारा विश्व भी सेंटर ही नहीं है, देखा ही नहीं है, माता है कन्या, तो बाबा कहते थे फरिश्ते बन के उड़ जाओ। तो बाबा वो अनुभव कराते थे कि सारे विश्व के अंदर कैसे साकाश देना है। अभी तो हम साकाश देने का अभ्यास करते हैं, उस समय बाबा ने खुद करके दिखाया। तो फिर बाबा बहुत प्यार से सब जगह जाते थे। फिर बाबा के साथ बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते थे खाओ पियो मौज करो खेलो कूदो, लेकिन ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं बहुत पक्की होनी चाहिए। और बाबा क्या करते थे, बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे। अब जब बैडमिंटन खेलते थे ना, तो वो बताते बाबा तो लंबे, डबल पावर, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की पावर, बाबा पावरफुल। जब बच्चे खेलते थे कभी कभी बच्चे हार जाते थे, फिर बाबा कभी बच्चों को उमंग इनका कम ना हो जाए तो बाबा कभी खुद अपना हल्का कर देते थे। फिर क्या होता था, बच्चे तो बच्चे ही हैं, कभी कभी कहेंगे आज तो बाबा हार गए, आज तो बाबा हार गए, तो बाबा कहते आज तो बच्चे बाप के गले का हार बन गए, आज तो बच्चे बाप के गले का हार बन गए, ऐसे बाबा उनको बताते थे। फिर कभी बाबा जहाँ खड़े होते थे ना, तो क्या है सारे दौड़ दौड़ कर आ जाते। अब हर एक सोचता है जैसे दादी आएगी, हर एक सोचेगा मैं दादी का हाथ पकड़ूं। कितने लोग पकड़ेंगे दादी का हाथ, तो बाबा का हाथ भी कितने पकड़ेंगे। तो बाबा बच्चों से बहुत रमणीक थे। बाबा कहते आओ बच्चे आओ बच्चे, अब कहेंगे हाथ पकड़ना है, तो बाबा कहते अच्छा ठीक है पांच बच्चे इधर आ जाओ, पांच ने पांच उंगली पकड़ ली, ठीक है पांच ने इधर पांच उंगली पकड़ ली, पांच दस इधर बाजू पे हाथ रख लेंगे, पांच दस इधर रख लेंगे और दस बारह कंधे पे हाथ रख लेंगे। हैं कैसे कर, जब केक काटते तो क्या करते हैं पता, देखा ना जब दीदी केक काटती है ना, चार लोग आगे होते बाकी क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के उनके दीदियों के कंधे पे हाथ रख लेते हैं, समझते हमारा भी केक कट गया, ऐसे होता है ना, क्योंकि हम आए तो कंधे पे हाथ रख ले, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख लेते हैं। तो बाबा मुस्कुरा खड़े हो गए। बाबा ने कहा देखो सारे दुनिया के अंदर कोई है इतना बछड़े वाल, इतने सारे बच्चे खड़े हैं मेरे। फिर बाबा कहते थे विराट रूप देखना तो यहाँ देखो। बाबा बच्चों से तंग नहीं होते थे, बाबा ये नहीं कहते थे। मैं आपको बताऊं, बाबा के पास वो उस समय हरियाणा में नए नए सेंटर थे, गांव की बहनें थी, और वो जैसे गुजरात में ना गांव में होते घाघरा डालते, उस हरियाणा की तरफ भी ऐसे घाघरा डाल करके वो बाबा के पास आते थे अपनी हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर। बाबा बीच में खड़े बाबा को घेर लेते थे, सारे अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में डांस करे। अभी थोड़े दिन पहले वो हरियाणा से माता आई यहाँ डांस करने लगी, मैंने कहा तुम लोगों को क्या हो गया यहाँ पर डांस करना तो बता के वह करो ना। तो वो बाबा के बीच खड़े है और बाबा बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते थे देखो इन माताओं ने कितनी भक्ति की है, कितने दुख सहन किए, आज बाप को पा करके कितना खुश हो रही हैं। तो बाबा बहुत प्यार करते थे, बाबा कभी बच्चों से तंग नहीं होते थे। बाबा कहते थे मेरे लाडले बच्चे हैं, मेरे सिक्की लदे बच्चे हैं, कलप के पहले वाले बच्चे, आज भी मुरली के अंदर था। बाबा कहते बाबा बच्चों से पूछते पहले कब मिले हो, तो बच्चे क्या कहते हैं है? है? कब मिले थे पांच, अच्छा कहानी सुना दो इसके है? सुनी हुई होंगी। शुरू में क्या था, साकार बाबा के पास, बाबा तो इतने इतने पावरफुल, और बाबा के सामने आए सब कुछ भूल जाएगा। कई बच्चे आते थे, कहते आज हम बाबा से ये प्रश्न पूछेंगे, बाबा के पास जाएंगे ना तो बाबा कहेंगे, बाबा को देखते बाबा कहेंगे बच्चे कुछ कहना, नहीं बाबा, बाबा कहेंगे बोलो कुछ कहना है, नहीं बाबा, नहीं बाबा, सब कुछ आंसर जवाब मिल गया है। तो फिर क्या था, बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना तो बच्चों के आंतरिक स्थिति का मालूम पड़ता था कि ये बच्चे बाप को कितना प्यार से उसी भावना से आ रहे हैं। तो बाबा के पास आते थे ना तो बाबा पूछते थे, बच्चे पहले कभी मिले हो, कहेंगे नहीं बाबा हम कभी नहीं मिले हैं। बाबा कहते थे, बच्चे पहले कभी मिले हो, कहते नहीं बाबा हम नहीं मिले हैं। फिर बाबा कहेंगे, याद करो पहले कभी मिले, हाँ बाबा हमारी दीदी ने हमको कहा था कि बाबा तुमसे ये प्रश्न पूछेंगे पहले कब मिले हो, तुमको जवाब देना है कि 5000 वर्ष पहले मिले थे। बाबा कहते थे, तोते को पढ़ा के ले आई, तोते को कहेंगे ना गंगाराम नल पे नहीं बैठना, वो क्या करेगा, बैठा ही रहेगा, बोलता रहेगा गंगाराम नल पे नहीं बैठना। तो बाबा कहते थे, किससे मिलने आए हो वो भावना होनी चाहिए ना, वो अनुभव होना चाहिए ना, वो अनुभव नहीं, अभी भी तो नए नए आते, ज्ञान ज्यादा सुना है लेकिन अनुभव कम। ये भट्टी में आना मीन्स अनुभव ज्यादा करना, भट्टी का अर्थ है कि बाप के साथ प्यार का अनुभव करना। फिर बाबा को बार बार ये नहीं कहना, बाबा हमने आपको नहीं देखा, बाबा हमको याद नहीं कर सकते, बाबा हम क्या करें, बाबा हम आपको भूल जाते, होता है ना ऐसे, आज भी कहा ना, बच्चे कहते बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते, सुना मुरली के अंदर है, तो कौन है घड़ी घड़ी भूल जाता है, हाथ तो खड़ा कर दो, चलो मैं ही कर देती हूँ है, कौन है, अच्छा सुनाओ बात है। अभी बाबा को एक बार क्या हुआ कि एक शुरू में बाबा से जब अव्यक्त बाबा से मिलते थे ना, पहले तो एक एक करके मिलते थे, 5-5 मिनट बाबा टाइम देता था, फिर बाबा के बच्चे बढ़ते गए, बाबा ने कहा था कब तक बाबा मिलेंगे, आगे चल करके मिलने की विधि में परिवर्तन होगा। जब ओम शांति भवन में बाबा आने लगे तो ग्रुप ग्रुप से मिलते थे, उसमें एक विदेशियों का ग्रुप था, उसमें एक भाई बार बार कहता था मैं क्या करूं, मैं बाबा को भूल जाता हूं, आज तो मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा कि मैं बाबा को भूल जाता हूं। सुनिए कहानी, नहीं है तो वो बाबा के पास जैसे ग्रुप मिलने बैठा तो बाबा बच्चों को दृष्टि दे रहे थे, उसको दृष्टि देते बाबा ने कहा ये सदा का सहज योगी बच्चा। तो सारे हंसने लगे, बाबा ने कहा क्या हुआ, कहते बाबा ये तो कहता आज मैं प्रश्न पूछूंगा बाबा से। तो बाबा ने कहा बोलो, तो कहा ये यही तो कहता बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं आपको याद नहीं कर सकता, बाबा आज तो मैं पावरफुल याद करूंगा, अभी मैं सेंटर पर जाऊंगा बाबा को याद करूंगा, योग में बैठूंगा, आज मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बाबा को बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तो बाबा ने कहा ये क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा याद तो ये करता है, बाबा मैं भूल जाता हूँ, है क्या बोला, बाबा मैं भूल जाता हूँ, बाबा मैं आपको घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, बोल तो बाबा ही रहा ना, ब्राह्मणों का जीवन ही बाबा है, ब्राह्मण जब बैठते हैं ना उस सिवाय बाबा की और कोई बात ही नहीं करते, आएंगे बाबा चलेंगे बाबा, बोलेंगे बाबा, मिलेंगे बाबा, खाएंगे बाबा, उठेंगे बाबा, बाबा करते करते रहते, लेकिन बाबा से प्यार भी है, बाबा से प्राप्ति भी है, लेकिन स्टाइल दूसरा बना दी, जैसे भक्ति में आदत है ना, हे भगवान मेरा ये काम कर दो, हे भगवान, बाबा कहते बाबा के पास आते थे ना बच्चे, अभी आपको और बात सुनाती, बाबा के पास आते थे, बाबा को कहते बाबा मेरा ना ये काम रुक आप कर दो ना, बाबा कहते देखो भगत आ गया, देखो देखो भगत आ गया। तो फिर कभी आते थे कोई हाथ जोड़ते थे, बाबा कहते अभी तक भक्ति का संस्कार नहीं गया, फिर बाबा को कहते बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, ऐसे आती है ना माता, यहाँ हमारे पास आती, कहती बाबा को कहना मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दे, बाबा कहते क्यों खोले, उसका ताला लगा पड़े लगा रहे, तुम तो अपना ले लो ना भाग्य, तुम अपना उसके कहा अपना भाग्य नहीं लेती हो, क्यों अपना भाग्य लो, उसका ताला तो खुलेगा, टाइम आने पे खुलेगा ना। तो बाबा कहते हैं इन बातों से अपनी बुद्धि को न्यारा करना, और न्यारा करके बाप के साथ क्या करना है, बाबा को कंप्लेंट नहीं करो, बाबा से मीठी मीठी रू रोहान करो, अपने भाग्य की गुण गाओ। बाबा जैसे कहते हैं, बाबा कहते हैं सारे के सारे मेरे VVIP बच्चे हैं। साधारण बूढ़ी चल नहीं सकती है, उसको दुनिया वाले कहेंगे चल नहीं सकती, उसको बाबा कहते मेरी VIP बच्ची है, अब बताओ हैं। तो बाबा हर एक बच्चे को इतना प्यार करता है, बाबा हर एक बच्चे की विशेषता को देखता है। बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, बाबा उसका फ्यूचर देखता था, उसका भाग्य देखता था, उसकी लगन देखता था। बाबा के सामने ऐसा नहीं होता था ये ऐसी साधारण को बाबा इतना क्यों प्यार कर रहा है। कभी कई कई बार कई बच्चे आते थे, छोटी मोटी कोई भूल हुई है, बाबा के पास आते तो बाबा उसको बहुत प्यार करते थे। देखने वाले कहते थे बाबा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बाबा हर बच्चे के अंदर को जानता है। तो जब बाबा जानता है तो हमें भी अंदर से बाबा के प्रति उतना प्यार होना चाहिए ना, उतनी लगन होनी चाहिए। तो ये सारे अनुभव आप बाबा के साथ के इस भट्टी में करेंगे, बाबा बहुत अनुभव कराएगा, अनुभव करेंगे और बाबा के साथ का। लेकिन बाबा से कंप्लेंट नहीं करनी है कोई, ठीक है। भट्टी में बाबा से मीठी मीठी बातें करो, खुशी में नाचो। आप तो सब नाचने में भी बहुत होशियार हो ना, होशियार हो ना, नाचने में भी होशियार हो, क्योंकि गरबा करेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, ताल से ताल मिलाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं ना गरबा कर, हमारे पास कई माताएं आती है चल नहीं पाती है, अरे गीत बजने दो तो गरबा कर रही है, इस कहते में चल नहीं पाते हो, गीत और डांस इतना अच्छा करती है, क्योंकि वो आदत है उनको, वो एक एक उनका पांव इतना अच्छा चलता है जो सीखा हुआ भी नहीं कर सके। तो वो एक अंदर रस बैठ गया ना, तो बाबा को जब हम अच्छी तरह से पहचान लेते ना, तो हमारे अंदर वो रस बैठ जाता है। बाबा को छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते, बाबा के बिना रह नहीं सकते, और बाबा के प्यार के बिना नहीं रह सकते। तो खुशी से बाबा के साथ मिलन मनाओ। क्यों हम बाबा से कंप्लेंट करें, क्यों हम अपने मन को मायूस करें, क्यों हम अपने मन के अंदर ऐसे विचार लाए हमने बाबा को नहीं देखा। अरे नहीं देखा, बाबा तो खड़ा है ना, बाबा तो बच्चों को देख रहा है, बाबा सामने आ जाता है ना, तो बाबा अनुभव करा रहा है। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, स्वागत के साथ साथ एक तो अभी आप सबको टोली खिलाएंगे। बाबा हमेशा प्यार से बच्चों को स्वागत में टोली खिलाते थे, और बाबा कभी कभी आंगन में खड़े होते थे, बच्चे मिलने आ जाते थे, बाबा रिसीव करते थे, कभी कभी दादी भी रिसीव करती थी, फिर तैयार होकर के आते थे, कहते अभी तुमको बाबा और दादी से मिलना है। तो हम उनको कहते थे अभी तो मिले आप बाबा से, कहते क्यों टोली कहाँ खाई है, टोली क्या है हमारा, क्या है बोलो ना, टोली क्या है, भूल गए, बोलते ही नहीं है ना, है जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो यहाँ मधुबन में रोज टोली मिलती है क्लास के बाद, आज भी तो टोली खिलाई ना, राजकोट से तो खूब टोलियां आती रहती है ना, आज टोली खिलाई ना, तो मधुबन में रोज क्लास के बाद टोली मिलती है। बाबा यहाँ पर बच्चों को टोली खिलाते थे, बाबा कहते थे आओ मेरे बच्चे, कौन से बच्चे हो, सिकिलदे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, और कौन से बच्चे हो हैं, बाबा कहते थे मेरे टोल पुट है, समझे टोल पुट, टोल जैसे ना गुजराती में कोई टोली, क्या मीठे को क्या बोलते हैं गुजराती में, मीठे को कुछ और बोलते हैं, बाबा सिंधी में मिठाई को टोली बोलते हैं, पंजाब में मिठाई बोलेंगे या बोलेंगे चीजी, बच्चों को कहेंगे आओ तुमको चीजी दें, मिठाई दें। तो बाबा कहते थे क्लब के बाद बिछड़े हुए बच्चे मिले, कितने मीठे बच्चे। आज भी बाबा ने कहा ना, बाबा कितना बड़ी स्क्रीन है, सैक्रीन है, है? कितनी बड़ी सैक्रीन, समझते ना, वो छोटी सी गोली होती है, मीठा होता है। तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं आओ मेरे मीठे मीठे टोल पुट आओ बाबा, टोल पुट मीन्स बच्चे। तो बाबा लाडले बच्चे भी कहते हैं, सिक्की लदे भी कहते हैं, टोल पुट बाबा, टोली मीन्स मिठाई, स्वीट, इसलिए बाबा कहते हैं मेरे सब बच्चे स्वीट बने रहे। और एक बात और बता दो, आजकल थोड़ा मौसम अच्छा है तो मन क्या करता है, सुबह अमृत वेले योग के बाद घूमने चले जाए, ऐसा होता है, हैं? कभी कहेंगे अच्छा मौसम है चलो भी अभी घूम जाए, तो अभी जब ये अंधेरा होता है ना सुबह थोड़ा, जैसे अभी अंधेरा है, मालूम है हम लोग कहाँ रहते हैं, माउंट आबू ये जंगल है, इसको जंगल को बाबा ने मंगल बनाया है। तो जंगल में राज्य कौन करता है? जंगल में कौन रहते? जंगल के लोग रहते हैं ना। और यहाँ बाबा के घर में बाबा के बच्चे ब्राह्मण देवताएं बनने वाले रहते हैं। तो कभी कभी है कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी अभी जैसे बरसात होती है ना, तो ये भालू आदि अपने बच्चों की संभाल के लिए उनको पानी पिलाने के लिए ले आते बाहर, और बाहर ले आते, कभी आपको देख लिया तो खुश हो जाएंगे, राजकोट के इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं तो क्यों ना हम भी इनका दर्शन कर ले। तो दर्शन करने आएंगे तो फिर क्या करोगे हैं? फिर डर के मारे भागोगे। दर्शन करने नहीं आए, दूर से दर्शन देना है। लेकिन क्यों बता रही हूँ, अकेले नहीं जाना। बात ये, क्लास के बाद जाओ घूमने, ग्रुप में जाओ, चार लोग जाओ, पांच लोग जाओ। अमृत वेले के बाद भी जाते हैं तो आता नहीं है, क्योंकि उधर नक्की लेक की तरफ उधर कॉर्नर है ना, उस तरफ वो क्रॉस करता है कभी कभी, कभी ऐसे कभी आता है, क्योंकि गर्मी है ना तो पानी तो चाहिए ना, जैसे मनुष्य को चाहिए, जीव जंतु सबको चाहिए, उनको भी खाने को चाहिए। जंगल से उनको भोजन तो मिल जाता है, पत्ते घास फूस मिल जाता है, लेकिन पानी तो नहीं मिलता है ना, तो पानी के लिए वो आता है। तो लेकिन अकेले नहीं जाना है, तो कैसे जाना हो? अगर मन करे तो क्लास के बाद जब बाय चांस कोई जाता भी है तो अकेले नहीं, तीन या चार मिल करके ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की तरफ से आपको ट्रोली खिलाई जाएगी। पहले हम भाइयों को, बहने सब उधर हो जाए, और जब आप ट्रोली लेने आएंगे तो हाथ लंबा करेंगे। पहले ट्रोली लेकर के भाई, हाथ लंबा ही करना है ना, ट्रोली लेकर के भाई जाएंगे, फिर माताओं को कोई उठेगा नहीं, जब तक हम ना बुलाएं तब तक उठना नहीं है, ठीक है ना। तो अभी एक मिनट बाबा की याद में। अच्छा, सब ठीक है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? सब आराम से खुश? खुश तो रहेंगे, बाबा के घर में रहने का मौका मिला तो क्या नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। अच्छा।